मीरा दोनों बच्चों को लेकर एक अनजान जगह पहुंच चुकी थी। वहीं घर पर नीक और प्रियल इन सब से बेखबर थे। नीक बाहर बैठकर अपना काम कर रहा था, तो वहीं प्रियल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके लैपटॉप पर मिस्टर मुखर्जी का भी मेल आया हुआ था। प्रियल ने मेल पढ़ा। फाइनली मिस्टर मुखर्जी ने सारी इन्फॉर्मेशन का PDF भेज ही दिया। चलो इन सब में कुछ तो अच्छा हुआ। प्रियल वहीं पर बैठकर सारी रिपोर्ट पढ़ने लगी। प्रियल को उस डिटेल में मीरा के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे क्लियरली ये साबित हो सके कि उसी ने चंद्रकांत जी को मारा हो। प्रियल बोली, यहाँ तो मीरा के अगेंस्ट एक भी सबूत नहीं है। हाँ, नीक सही कहते हैं कि मैं बेवजह शक करती हूँ। हाँ, सच में मीरा बदल गई है और मेरे ओवरथिंकिंग करने से वो मुझे गलत नज़र आती है। कुछ भी हो, लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है कि जब वो ठीक है और बाबा ने उसके लिए लड़का पसंद कर दिया था, तो वो लड़का एक बार भी सामने क्यों नहीं आया? मीरा की हालत इतनी बुरी है और उसने आकर संभाला तक नहीं। उसके बयान के साथ उसके फ़ोन नंबर भी होंगे, एक बार उससे बात करके देखती हूँ। उसने इधर उधर देखा, मेरा मोबाइल कहाँ रह गया? बच्चों के भी आने का टाइम हो गया होगा, ये नीक भी अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने बोला तो था कि वो दोपहर तक आ जाएंगे। प्रियल खड़े होकर बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। प्रियल ने दरवाज़ा खटखटाया। मीरा, दरवाज़ा खोलो, तुमने बंद किया है ना इसे? मीरा, ओपन द डोर। नीक को ये आवाज़ सुनी। प्रियल की रूम से उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किसने किया और मीरा कहाँ है? मीरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, मुझे लगा वो सो रही होगी। नीक ने जल्दी से जाकर प्रियल के कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की वजह से प्रियल थोड़ा घबरा गई थी। नीक हैरान हुआ, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? प्रियल बोली, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखिए, आप मुझसे गुस्सा मत करिएगा, लेकिन मैंने मिस्टर मुखर्जी से बात करके चंद्रकांत जी की मौत से जुड़ी डिटेल फाइल मंगवाई थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इन सब से दूर रहना, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। और मीरा कहाँ है? उसने ये सब सुना तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? प्रियल बोली, अपने रूम में सो रही होगी, इस वक्त उसका यही काम होता है। उसे छोड़िए, देखिए ना, मीरा के अगेंस्ट यहाँ पर एक भी प्रूफ नहीं है। नीक ने कहा, हाँ तो अच्छी बात है ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो अब बदल गई है। प्रियल, उस टाइम उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रही थी। लेकिन इस फाइल में मीरा के बयान में लिखा था कि उनकी मौत के वक्त वो उस लड़के के साथ थी जिस लड़के को चंद्रकांत जी ने उसके लिए पसंद किया था। उसने मीरा को पसंद कर लिया था, लेकिन मीरा की हालत इतनी खराब थी, उसके बावजूद उस लड़के ने उसे संभाला क्यों नहीं? ये हमारे घर में क्या कर रही है? इसे उसके पास होना चाहिए, एक बार उससे बात करके देखते हैं ना, प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए, लेकिन इसके बाद तुम मीरा पर बिल्कुल भी शक नहीं करोगी, चलो प्रॉमिस करो। प्रियल बोली, आप एक बार उस लड़के से बात तो करके देखिए, उसके बाद का बाद में देख लेंगे। प्रियल की जिद करने पर नीक ने उस लड़के को फोन किया जिसे चंद्रकांत जी ने मीरा के लिए पसंद किया था। मीरा के अनुसार जिस रात उनकी मौत हुई थी तब वो उसी के साथ थी। उस लड़के का नाम अनिमेश था और वो वहीं कोलकाता का रहने वाला था। अनिमेश बोला, हेलो, कौन? प्रियल बोली, हेलो, मैं मीरा की फ्रेंड बोल रही हूँ, आपकी उससे कोई बात हुई क्या? देखिए, पिछले कई महीनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, आप दोनों की शादी होने वाली थी ना, हो गई क्या? अनिमेश हैरान हुआ, और आपको किसने कहा कि हम दोनों की शादी होने वाली थी? मतलब हम दोनों तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चंद्रकांत अंकल ने आपको मीरा के लिए पसंद किया था, फिर आप एक दूसरे को कैसे नहीं जानते, जबकि आप दोनों 2-3 दिनों तक एक फैमिली फंक्शन में एक साथ थे। मीरा ने मुझे बताया था कि जब अंकल की मौत हुई थी तब वो आपके साथ ही थी। हाँ, उस रात मीरा मेरे साथ गई जरूर थी, लेकिन हम लोगों की 10-15 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं हो पाई थी। उसके बाद मीरा वहां से चली गई तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया था और मैं वापस शादी में जाने के बजाय अपने घर चला गया था। अनिमेश से बात करके प्रियल ने फोन कट कर दिया। नीक उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रियल आखिर कहना क्या चाहती है। नीक ने कहा, उस लड़के से बात करके क्या प्रूफ हो गया? देखो, उसकी बातों से ही पता चल रहा है कि मीरा और उस लड़के ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया होगा। जब दोनों में प्यार ही नहीं था, शादी भी नहीं होने वाली थी, तो वो क्यों पता लगाता कि मीरा कहाँ और किस हाल में है? प्रियल बोली, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, चंद्रकांत जी के मौत के समय वो कहाँ थी? रिश्तेदारों का कहना है कि वो अनिमेश के साथ गई थी, जबकि अनिमेश बोल रहा है कि वो उसके साथ 10 से 15 मिनट रुकी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मीरा उस लड़के के साथ 10 से 15 मिनट बिताने के बाद अपने घर पर आई हो और अपने बाबा को मार दिया हो। नीक प्रियल के करीब आया, अच्छा तो मीरा चुड़ैल है, इन सब बातों पर बाद में बात करेंगे। नील और निखिल को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, और प्लीज़ एक बार मीरा को इस बारे में कुछ मत बताना, अगर उसने ये सब किया भी है तो सब जानने के बाद उसे संभलने का मौका मिल जाएगा। नीक प्रियल को घर पर छोड़कर बच्चों को लाने चला गया। वहां जाकर उसे पता चला कि दोनों बच्चे कब के घर जा चुके थे। ये सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया और उसने प्रियल को कॉल किया। नीक घबराते हुए बोला, देखो ना प्रियल, ये स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं कि स्कूल तो कब का ऑफ हो चुका है और हमारे नील निखिल भी यहाँ से जा चुके हैं। तुमने आरोही को बोला था क्या उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही प्रियल, जवाब दो। मीरा बोली, हाँ शोना, बोलिए, किस बात का जवाब चाहिए आपको? नीक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रियल का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मुझे उससे बात करनी है। मीरा, मेरी बात करवाओ उससे। मीरा बोली, मुझे तो लगा कि आपको नील और निखिल से बात करनी होगी, बाकी प्रियल घर पर होगी, मुझे नहीं पता। नीक गुस्से में चिल्लाया, क्या मतलब प्रियल घर पर होगी? मीरा कहाँ हो तुम? और मेरे बच्चे तुम्हारे पास हैं क्या? मीरा नील और निखिल की तरफ देखकर बोली, हाँ अभी तक तो मेरे ही पास हैं, लेकिन बाद में पता नहीं किसके पास होंगे। शोना, आप इन दोनों को लेने के लिए आ रहे हो ना? मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। और हाँ, होशियारी करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना उम्र भर अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरसते रहोगे। नहीं नहीं, तुम उन्हें कुछ मत करना, मैं भी आता हूँ। नीक के आने का सुनते ही मीरा ने कॉल कट कर दिया, जबकि नीक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब से कैसे डील करे। वो चाहकर भी किसी को इस बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि यहाँ बात बच्चों की थी। नीक रोते हुए बोला, अगर नील और निखिल को कुछ हो गया तो मैं प्रियल को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो बार बार कहती रही कि मीरा पर विश्वास मत करो, जबकि मैं, प्लीज गॉड, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, मेरी मॉम एली, हमारा पहला बच्चा और बाद में प्रियल, अब मेरे बच्चे नहीं। इतनी मुश्किल से लाइफ में थोड़ी खुशियां आने लगी थी कि पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे।
नीक जल्दी से मीरा की बताई हुई जगह पर पहुंचा। वो जगह शिमला से बाहर कुछ दूरी पर एक खाली पड़ा खंडहर था, जिसमें जगह जगह पर गड्ढे थे। उन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ था। वो उस खंडहर में थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक बंद कमरे जैसी जगह पर उसने दोनों बच्चों को एक कांच के बूथ में बांध कर रखा था। दोनों बच्चे वहां कुर्सियों पर बंधे थे। नीक ने उन दोनों को बेहोश देखा तो वो और घबरा गया। मीरा के साथ वहां पर तीन चार और लोग मौजूद थे। नीक ने उसके साथ एक आदमी को खड़े देखा। ये वही आदमी था जो उसे चर्च के बाहर छेड़ रहा था। उसे देखते ही नीक को सब समझ में आ गया कि कैसे मीरा ने उस तक पहुंचने के लिए वो सब ड्रामा किया था। नीक ने कहा, क्या किया तुमने ऐसा मीरा? मैंने तुम्हें अपना समझकर तुम्हारी मदद की थी, और तुमने? मीरा बोली, आपने हमें अपना समझा ना, तो अब अपना बना भी लीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम भी आपके बच्चों से बहुत प्यार करने लगे हैं। हम इन्हें प्रियल की कमी कभी नहीं महसूस होने देंगे। तुम प्रियल की जगह कभी नहीं ले सकती, ना मेरी लाइफ में और ना ही इनकी लाइफ में। मीरा गुस्से में चिल्लाई, आप उस लड़की का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने, या आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? नहीं, उन दोनों को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा, प्रियल भी वैसा ही करेगी, बस इन दोनों को जाने दो। हम दोनों के बीच बच्चों का क्या कसूर है, इन दोनों को बीच में मत लाओ। मीरा हंसते हुए बोली, इन दोनों को जाने दूंगी तो आप मेरी बात कैसे मानोगे? वो नीक के पास आई और ज़बरदस्ती गले लगकर कहा, आपको तो बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों बच्चों को जाने देंगे, बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए। नीक ने मीरा को खुद से अलग करते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मैं प्रियल से प्यार करता हूँ, मैं उसके अलावा किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? मीरा बोली, प्यार का क्या है शोना, पहले भी तो आप किसी और से प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद प्रियल से प्यार हुआ ना आपको, वैसे ही जब प्रियल आपसे दूर हो जाएगी तो आपको हमसे भी प्यार हो जाएगा, देखना शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीक ने कहा, देखो मीरा, अभी तक हम दोनों का डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो बिना डिवोर्स हमारी शादी कैसे हो सकती है? आप मुझे बातों से बहलाने की कोशिश तो मत ही कीजिए शोना, इस एक हफ्ते में मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि आप क्या चीज़ हो, तो मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रियल के साथ डिवोर्स हुआ है या नहीं, हम दोनों की शादी हो गई तो वैसे भी वो आपको छोड़ देगी। चलिए अब आप घर जाइए, बचा हुआ आखिरी दिन अपनी प्रियल के साथ बिता आइए, लेकिन कल आ जाइएगा हमारी शादी में। नीक ने कहा, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मत जाइए, हम क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, आप हमारी आंखों के सामने रहेंगे। बाकी प्रियल की हालत सुबह से कुछ ठीक लग नहीं रही, उसे भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, ऐसा ना हो इन दोनों के चक्कर में उससे भी हाथ धो बैठें जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं। नीक की आंखें नम हो गईं। प्लीज़ एक बार बच्चों से बात करने दो, मीरा बोली, ये दोनों तो अभी बेहोश हैं, और चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगी, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ये दोनों बेहोश ही रहेंगे। रोइए मत, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, दोनों बच्चे भी जिंदा हैं, फिर क्यों रो रहे हो? सुनो, इन दोनों को बेहोशी की दवाई सुंघा देना। नीक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो? मीरा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, प्लीज मेरे बच्चों को जाने दो। मीरा बोली, इतनी जल्दी तो अभी हम भी नहीं हैं, जितनी जल्दी आपको लगी है, मैंने कहा ना कल आइएगा, और हाँ, प्रियल से क्या झूठ बोलना है वो आप खुद सोच लीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो आपको शादी के बाद ही मिलेंगे। उसने प्रियल का फोन देते हुए कहा, ये लीजिए अपनी वाइफ का फोन, ओ सॉरी, एक्स वाइफ का, और याद रहे नील और निखिल मेरे पास हैं, अगर यहाँ पर पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो में से किसी भी टीम पहुंची तो दोनों बच्चों को ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी कि पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाओगे। मैं जेल में रहूंगी तो इन्हें भी एक ऐसी जेल में छोड़कर जाऊंगी जहाँ ये जिंदगी भर फंसे रहेंगे। नीक लाचारी से नील और निखिल की तरफ देख रहा था, दोनों बच्चे बेहोश थे। नीक रोते हुए वहां से बाहर आया, जबकि प्रियल अभी तक घर पर उन तीनों के लौटने का इंतजार कर रही थी। नीक ने कहा, मैं प्रियल को जाकर क्या बोलूंगा, मेरी वजह से आज मेरे दोनों बच्चे उस मीरा के पास कैद में हैं, अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, काश मैं उस दिन उस लड़की को घर पर लेकर आता ही नहीं,
प्रियल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन आज अपने बच्चों के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा। आई प्रॉमिस मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा और उस मीरा की ऐसी हालत करूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच पाएगी। जैसे तैसे नीक ने खुद को संभाला और घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि प्रियल उन तीनों का वेट करते हुए इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसने खुद की आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा।